आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। फिर से कुमारियों की इस फुलवाड़ी में आपका स्वागत है। हमें वो सब दिखाने के लिए जो इस कुमारी जीवन में ज्ञान में लेट आए या कोई और कारण बना तो नहीं देख पाए, और वो है दादियों के जीवन की झलकियां। आपने तो 100 से अधिक दादियां देखी हैं, बाबा मम्मा को देखा है। क्या क्या सीखा उनके जीवन से, क्या चीजें हैं जो अंदर प्रेरित कर गई बहुत सारा काम करने के लिए, इस देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए, तो वो सब झलकियां हम सबके साथ शेयर करेंगे आदरणीय आशा दीदी जी।
जो कन्याएं बिल्कुल पीछे बैठी हैं, संभव हो तो आगे आ जाओ, बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, आगे बैठना चाहिए। हमेशा आगे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा बच्चों को सदा ये सिखाते थे, आगे बैठो। आगे बैठने में क्या फायदा है कि आप केवल सामने देखेंगे, मंच को देखेंगे, पीछे बैठेंगे तो सारी जो भी सीनरी चल रही होगी उसको देखेंगे, तो आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी। तो मैं मम्मा से शुरू करती हूं। कितनों ने मम्मा की जीवन कहानी पढ़ी है? वेरी गुड, बहुतों ने पढ़ी। मम्मा सिंपल कन्या थी आपके जैसी, लेकिन मम्मा जिस दिन से बाबा को पहचाना, दिल में टच हुआ कि ये भगवान की वाणी है, उस दिन से मम्मा नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बन गई। मम्मा की सगाई हुई हुई थी, लेकिन मम्मा को परिचय मिला शिव बाबा का। ये अंतिम जन्म है और इस जन्म में पुरुषार्थ करके श्री लक्ष्मी का पद मुझे प्राप्त करना है। मम्मा ने दुनिया को एकदम किनारे कर दिया। मम्मा बहुत ब्यूटीफुल थी, इंटेलिजेंट थी, डांस बहुत अच्छा करती थी, गीत बहुत अच्छा गाती थी, पढ़ाई में अच्छी थी। ऐसे ही बाबा की पढ़ाई को भी मम्मा ने उतना ही अच्छी रीति से पढ़ा। मम्मा से पहले भी कई आत्माएं आई थी, बहुत सारी ऐसी बहनें थी जो मम्मा से पहले आ चुकी थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते मम्मा नंबर 1 चले गए। मम्मा का स्लोगन होता था कि बाबा ने एक बार कहा है ना, दोबारा बाबा को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार कहा ना बाबा ने, बहुत है। वास्तव में एक बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देवताएं इशारों से समझते हैं, देवताएं पिकअप करते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु अगर बाबा ने कह दिया तो वो पत्थर पर लकीर होता था, ऐसा हो नहीं सकता था कि ममा उसे साकार न करे। ममा की लाइफ में मुरली का जबरदस्त महत्व था। जैसे आप लोगों को कहते हैं ना, भी क्लास में रेगुलर आओ, पंक्चुअल आओ, बोलते हैं ना, दीदियां बोलती हैं ना, नहीं बोलती है? बोलती है। जैसे आप लोगों को कहते हैं, ऐसे बाबा भी सिखाते थे। बच्चे बाबा की क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल। एक दिन मम्मा लेट हो गई, एक दिन मम्मा अंदर नहीं आई, बाहर सीढ़ी में बैठ के बाबा की मुरली सुनी। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। और बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, ये मम्मा का स्लोगन था पुरुषार्थ का। बाबा ने कहा और हमने किया। आप लोगों ने कई कहानियां सुनी होंगी मम्मा की, हमने तो इन आंखों से देखा है मम्मा और बाबा को। मम्मा की मुरली चलती थी, मम्मा बाबा की इतनी रिस्पेक्ट रखती थी, बाबा के आने की आहट मम्मा को आती थी, मम्मा बोलना बंद कर देती थी। सुप्रीम शिक्षक के आगे बोलना। और जब बाबा आते थे, ऐसे संदली होती थी, इधर मम्मा की इधर बाबा की, पहले बाबा मम्मा की मुरली चल रही है। उन दिनों माइक्रोफोन थोड़ी होते थे, कुछ नहीं होता था। धरती पर हम लोग चादर डाल के, धूल वाली जमीन होती थी, उस पर बैठ के मुरली सुनते थे। मम्मा बाबा आए और मम्मा अलर्ट होके थोड़ा सा ऐसा होके बैठ जाती थी और बाबा को देखती थी, बाबा क्या कह रहा है। इतना मम्मा का स्टैमिना था, बाबा जो मुरली चलाते थे वो सारी मुरली मम्मा की जैसे छप जाती। और बाद में मम्मा उसे रिपीट कराती थी बच्चों के साथ। आप लोगों को जानकर अभी इसके साथ ही याद आ रहा है, हमारी दादी रतन मोहिनी। आप में से कितने हो जो दादी को जानते हो? लगभग सब जानते हैं ना। दादी आजकल स्वास्थ्य लाभ के लिए गई है। तो दादी रतन मोहिनी सारी बाबा की मुरली, मेमोरी दादी की बहुत अच्छी थी, सारी बाबा की मुरली सुनती थी और बाद में लिखती थी। बाद में ये लिखने का जो कार्य है दादी रतन मोहिनी से शुरू हुआ और मम्मा सारा सुन के बाद में रिवाइज कराती थी। मम्मा की विशेषता थी एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव साधारणता नहीं थी, वेरी एक्सक्लूसिव। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूं, आजकल कन्याएं आती हैं सेंटर पर रहने के लिए, कभी कभी उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं हमको, बहन जी मेरी कन्या जो है ना वो केवल कंप्यूटर का काम करेगी। तो हम तो पुराने जमाने की पालना दादियों की ली हुई है, हमको तो ऐसा दादियों ने सिखाया नहीं है कि तुमको सिर्फ कंप्यूटर की सेवा करनी है, तुमको सिर्फ भाषण की सेवा करनी है, ये तो सिखाया नहीं है। हमको तो सिखाया ऑल राउंड मन वचन कर्म तन मन धन सब प्रकार से यज्ञ की सेवा करनी है। तो कई बच्चे कर्मणा करते हैं, कई वाचा करते हैं, कई मनसा से करते हैं। तो एक दिन मम्मा से सवाल पूछा, मम्मा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में से कौन सी सेवा नंबर वन है, आप क्या जवाब देंगे? आप लोग उत्तर दो, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में से कौन सी सेवा नंबर वन है? कर्मणा, मनसा, मनसा, जो कहीं मनसा वो हाथ खड़े करो। अच्छा, जो कहीं वाचा वो हाथ खड़े करो। अच्छा, वाचा पे कोई नहीं है, ये तो खतरनाक बात हो गई। फिर आगे हमारी क्लासेस कौन कराएगा, भाषण कौन करेगा? अच्छा ठीक है, चलो कर्मणा जो कहते वो हाथ खड़े करो। अच्छा बाकी क्या कहते हैं? नजदीक आके बोलो। तीनों, तीनों कैसे करेंगे? तीन में से एक बताओ। स्थिति अच्छी है तो कोई भी सेवा कर। चलो अभी सुनो, राइट, हिम्मत रखी। मम्मा का उत्तर ये था, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वो सेवा नंबर वन है। कितना अच्छा आंसर है। कभी हमारी जरूरत, यस, मम्मा के आंसर पर ताली बजाओ, इतना अच्छा मम्मा का आंसर था। जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वो सेवा नंबर वन है। कभी भोजन की, भोजन बनाने की सेवा, कभी भाषण की, कभी योग की, जिस समय जिस चीज की जरूरत है। हम कहें हमें खाना बनाना नहीं आता, आजकल बुरा नहीं मानना, आजकल कन्याएं कहती हैं, दीदी हमने घर में बिल्कुल कोई काम नहीं किया, हमारी मम्मी करती थी, मम्मी सब कुछ करती थी। भाई खाना बनाना, टेबल सेट करना, दीदी हमने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। तो बाबा इसे पसंद नहीं करते थे। बुरा नहीं मानना बहनों, कुमारियां समझती हैं खाना बनाना कोई कम दर्जे का काम है। नहीं, आना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। आजकल तो कन्याएं जो रिश्ता करती हैं लौकिक रूप से, वो भाई से पूछती है, तुमको खाना बनाना आता है? पूछती है ना, तो हमको तो आना चाहिए ना। बाबा को भोग कौन बनाएगा, बाबा को भूखा रखेंगे। सोच रहे थे जरूर खाना बनाना आना चाहिए। बाबा ने सब चीज सिखाई दादियों को, सब चीज सिखाई। कोई भी दादी ऐसे नहीं कह सकती है कि हमको ये नहीं आता। नास्तिक, बाबा कहता था नास्तिक, ना माना नास्तिक। गुलजार दादी सुनाते हैं कि पूरी साइकिल, ये साइकिल होती है ना, साइकिल चलाते हो ना आप लोग, वो साइकिल दादी कहते पूरी खोल के मैं फिर से जोड़ सकती हूं। बाबा ने ये भी कार्य सिखाया। रतन मोहिनी दादी कहती है मैं सारी ये बिजली की तारें लगा सकती हूं, बाबा ने सिखाया। बाबा ने एक चीज कही, तुम कौन हो? तुम विष्णु चतुर्भुज हो, तुम नारी नहीं हो, महिला नहीं हो, विष्णु चतुर्भुज हो। तुम्हारे अंदर दोनों संस्कार चाहिए, वो भी चाहिए तो वो भी चाहिए। दादियों के द्वारा पहरा दिलाते थे बाबा, पहरा। यज्ञ की रक्षा के लिए पहरेदार तो चाहिए ना, जब ऑपोजिशन चल रहा था तो पहरा भी दिलवाते थे। हमारी दादी निर्मल शांता, बर्तन मांजना नहीं आता था तो बाबा छोड़ेगा थोड़ी क्या? दादी निर्मल शांता बाबा की बच्ची, कितने ऊंचे परिवार की, लेकिन कभी नहीं बोला कि ये मैं नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, दादी कहते हम लोग छोटे छोटे होते थे, पतीले के अंदर घुस जाते थे और तब उसको साफ करते। ना नहीं बोलना, हर प्रकार की सेवा। ड्राइव भी करती थी दादी निर्मल शांता, क्या नशा था दादी को। एक बार बाबा को बाबा के बंगले से मम्मा के बंगले में ले जा रही थी, रास्ते में लाइट आती है ना, ये आ गई, तो क्या बोलते हो आप लोग, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट आ गई तो वो था रेड, रेड था तो दादी ने जंप कर दी रेड लाइट, तो वहां जो पुलिस खड़ी थी उसने जोर जोर से सीटियां बजाई, सीटी बजाई तो गाड़ी रोकनी चाहिए ना, नहीं रोकी, बाबा को वहां पहुंचा दिया। बाबा को, बाबा ने कहा बच्ची तुमने रेड लाइट स्किप की, फिर उसने सीटी बजाई तो तुमने गाड़ी रोकी नहीं, अब वो तुमको फाइन करेगा, तुम जाओ और उसको बताओ। दादी आए, दादी नशे वाली थी बहुत, क्या नशा था दादी को। पुलिस वाले से पूछा भाई तुमने सीटी क्यों बजाई थी, तो उसने कहा तुमने लाल लाइट जंप की थी, हाँ की थी। देखो तुमको पता है मेरी गाड़ी में कौन बैठा था, मेरी गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था, और मैं तुमको बता रही हूं अगर तुमने आगे से भी सीटी बजाई तो मैं गाड़ी रोकूंगी नहीं, जब खुदा दोस्त बैठा होगा तो मैं रोकूंगी नहीं। फिर बाबा ने दादी को समझाया कि देखो बाबा के लॉज ईश्वरी लॉ और हैं, लेकिन हम रहते कहाँ हैं? उस दुनिया में रहते हैं ना, तो वहां के भी लॉज पालन करने आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम रोज करोगे तो इसकी सजा नहीं होती, होती है। जो दुनिया के लॉ हैं, गवर्नमेंट के लॉ हैं, उनको पालन। तो बाबा बैलेंस सिखाते थे, नशा भी रखो परंतु साथ साथ जमीन पर भी पांव होने चाहिए, ऐसे ही नहीं उठते। ऐसे ही सब प्रकार की सेवा। आजकल तो देखो हम लोग एक दूसरे की चीजें ले लेते हैं, एक दूसरे की चीजें यूज कर लेते हैं, एक दूसरे की थाली में खा लेते हैं, वो ग्लास से पानी पी रही उसको भी पिला देते हैं, लिमका पिया तुम भी ले लो, ये सब काम करते हैं। लेकिन ये यज्ञ में बाबा सिखाया बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसके संस्कार फिर तुम्हारे में आ जाएंगे। चाहिए वो संस्कार, चाहिए दास दासी बनना है एक दूसरे का। लेकिन कुमारियां ऐसा कर लेती है ना, बाबा कहते नहीं। एक बार आपको छोटी सी घटना सुनाती, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे 69 मधुबन में, तो वहां ट्रेनिंग सेक्शन में हम लोग रहते थे। आड़ू के पेड़ थे, वो आड़ू के पेड़ जो थे वो उसमें खूब सारे आड़ू लगे हुए थे। तो आप जानते हो कन्याएं तो कन्याएं होती हैं, उन क्या किया एक दिन आड़ू जो थे ना उस पेड़ को अपने उसमें खींच करके डाल को सारे आड़ू निकाल लिए, खा पी लिया मौज के। अब कोई ना कोई तो होता है जो शिकायत लगा देता है, तो एक बहन थी उसने शिकायत लगा दी चंद्रमणि दादी को। शाम को कचहरी हुई, मम्मा कचहरी कर दी, यज्ञ वत्स इकट्ठे रहते हैं ना, तो रात की क्लास में मम्मा कचहरी किया करती थी, भाई किसी ने कोई भूल की तो हाथ खड़ा करो, अच्छा किसी ने नहीं की, किसी ने किसी को करते हुए देखा हाथ खड़ा करो, फिर उसकी भूल बताई जाती थी सारी सभा के बीच में। लेकिन अच्छी बात ये थी, बाबा की पालना इतनी प्यारी पारिवारिक रूप की थी कि किसी की कोई भी बात अगर सभा में भी बोल देते थे ना तो किसी को फील नहीं होता था। आजकल तो हम लोग फील कर लेते हैं ना, हम लोग छुई मुई के पौधे हैं, टच मी नॉट, मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे कुछ कहना नहीं, हो ना आप लोग हो ना टच मी नॉट, टच मी नॉट नहीं हो, टच मी नॉट हो, जरा सा कोई कहे तो चेहरा बदल जाता है। अभी मैं इसके ऊपर भी सुनाती हूँ। तो क्या हुआ, चंद्रमणि दादी को बता दिया, चंद्रमणि दादी हमारी ट्रेनिंग टीचर थे, तो रात को हुई ये कचहरी हुई, कचहरी हुई तो दादी आए क्लास में, दादी ने कहा आज किसी ने कोई भूल की, सब चुप कोई भूल नहीं की, दादी ने कहा किसी ने कोई भूल नहीं की, नहीं बिल्कुल नहीं की, हमें पता ही नहीं ये भूल होती है, तो कहा किसी ने कोई भूल नहीं की, नहीं की। फिर दादी ने कहा आज आड़ू किस किस ने तोड़े, किस किस ने खाए, मैंने तो नहीं खाए थे ना तोड़े थे, लेकिन मेरे ही कमरे में हुआ था तो पकड़े तो जाएंगे ना सभी। तो दादी ने कहा, सबने हाथ खड़े किए, दादी बोले चोरी, बाबा के घर की चोरी। हम हैरान, हमने कहा हमने क्या चोरी कर ली, तो आड़ू लगे हुए थे, हम थोड़ी गए थे, वो हमारी खिड़की के पास आ रहे थे, हमने ले लिए, हम थोड़ी गए तोड़ने उनको, वो खुद ही आ रहे थे, तो हमने ले लिए। तो दादी ने कहा नहीं, ये चोरी होती है, क्योंकि जो बगीचे वाला है उसको पता है ना कितने लगे हैं, कहाँ लगे हैं। वो अगर समझो सवेरे की टोली में वो तोड़ता है और 50 आड़ू उसमें से कम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, कम पड़ जाएंगे। तो हमेशा जो भी काम करो ना, डिपार्टमेंट वाले से, ड्यूटी वाले से पूछ के करो, ठीक है। तो ये चीज सीखी हम लोगों ने कि कभी भी कोई भी काम करना होता ना, हम चलते फिरते किसी का पेन उठा लेते हैं, किसी का कुछ उठा लेते हैं, नहीं, उसने कहाँ रखा, उसके संकल्प चलेंगे। तो बाबा कहता था कि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो जो संकल्प उसके चलते हैं वो सारा बोझ आपके ऊपर आ जाएगा। हम लोग तो हंसी में करते हैं ना, लेकिन बाबा ऐसे सिखाता था, क्योंकि बाबा संकल्प की बहुत वैल्यू रखते थे, खुद के भी और बच्चों के भी। एक ऐसी घटना थी जिसमें बड़े दीदी ने, वैरायटी तो होते हैं ना सभी लोग, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ करता है, वैरायटी प्रकार के भाई बहन होते हैं। तो एक बहन, वो गड़बड़ की उसने, कुछ जरूर गुस्सा किया होगा या कुछ किया होगा। तो दीदी बाबा के पास आई, दीदी जानते हैं ना, दीदी मनमोहिनी बाबा के पास आई। बाबा को कहा, बाबा वो जो बहन है ना, तो फिर जैसे आप किसी के बारे में बोलो तो फेस पर एक्सप्रेशन आता है ना, चेहरे पर आ जाएगा ना चिड़चिड़ापन सा, या थोड़ी फीलिंग से आ जाएगी ना। तो बाबा वो जो बहन है ना, उसने आज बहुत तंग किया, वो बहुत ऐसा। बाबा ने कहा, तंग उसने किया, तुम अपना चेहरा क्यों खराब कर रहे हो। समझ आई मां, बात समझ में आई। तंग उसने किया, तुम उसकी बात मुझे बता रहे हो, लेकिन चेहरा क्यों अपना खराब कर रहे हो, फीलिंग से क्यों बोल रहे हो, गलती उसकी और आप उसको प्रत्यक्ष कर रहे हो। बाबा ने कहा, पहले अपना चेहरा ठीक करो। निमित्त बनकर, ट्रस्टी होके कोई बात बताना वो अलग बात होती है, और बहुत ढंग से बतानी होती है, शिकायत के रूप से नहीं। वो भी बाबा सिखाता था, मम्मा सिखाती थी। समझो कोई ने कोई भूल की, तो मम्मा की विशेषता ये थी, आप मम्मा के पास जाएंगे ना, कहेंगे मम्मा उसने ऐसे ऐसे किया, तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा कहती थी, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुमने क्या किया। कहते मम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, मैं सुन करके आ रही हूं, आपको बता रही हूं। मम्मा कहते तुमने कुछ नहीं किया, मम्मा मैंने इतना ही बोला था, वो इतना बोलने लग गई। मम्मा ने कहा पहल किसने की, पहल किसने की। तो बेचारी कहती है, मम्मा मैं तो आई थी उसकी बात लेके, आप मेरे को ही दोषी बना रहे हो, मुझको ही बोल रहे हो। मम्मा ने कहा दोनों तरफ से होता है, और मम्मा अगर सुधार करती थी ना, तो ऐसे हम लोग तो बोल देते हैं ना, मम्मा बोलती नहीं थी। मम्मा की सुधार की विधि बड़ी न्यारी थी। क्या करती थी मम्मा, मानो कोई बात आई तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके उस आत्मा को पावरफुल पॉजिटिव सकाश देती थी साइलेंस में, और जो मम्मा को समझाना होता था ना, वो सब मम्मा समझा देती थी। डे टाइम में वो बहन आती थी, मम्मा आपने मुझे याद किया? मामा कहती थी याद तो नहीं किया, बोलो क्या बात है। तब वो अपनी सारी बात बता देती थी। जब बता देती थी तो मामा कहती थी अभी क्या करना है, फिर मामा उनको प्यार से समझा करके भेज देती। तो हम बच्चों के लिए बाबा ने कोई बात कैसे कहनी है उसकी भी विधि सिखाई हुई है। जोर जोर से बोलना, जोर जोर से करना, वो तो कलयुगी संसार है, बाउंड्री पार, वो अपना नहीं है। परंतु ढंग से कहना। अब मैं आपको बताती हूं एक और बात जो प्रायः मैं पाती हूं कुमारियों में आजकल दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोगों में न भी हो, लेकिन मेजॉरिटी, कोई काम बताओ ना तो क्या दीदी भूल गया। आजकल मेमोरी कम हो रही है, दीदी भूल गया। बाबा अगर कोई भूलता था ना उसको अच्छा नहीं मानता था। बाबा कहते थे जब तुमको ये डायरेक्शन दिया गया तो तुम कहाँ थे? आप याद करो अपना बचपन, स्कूल जाते थे, जिस दिन आप होमवर्क नोटबुक ले जाना भूल जाते थे तो आपकी टीचर क्या कहती थी? अच्छा तुम लंच बॉक्स लाना नहीं भूली और नोटबुक लाना भूल गई, बोलती थी टीचर? बोलती थी ना। ऐसे ही बाबा कहता था आप कौन हो? आप योगी हो, और योगी आत्माएं भूल जाएं, वो भी यंग एज में। इसको बाबा कहता था कुछ गड़बड़ है, बुद्धि भटकती है, बुद्धि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है। बाबा ऐसे बोलता था। एक बार एक आत्मा के लिए बाबा ने कहा दीदी को, दीदी मैं सुना देती हूँ, उसका नाम अंगना भाई था, उनका नाम अंगना, वो बेंगलोर के थे, वारिस कॉलेज। मैंने देखा है उनको। अंगना भाई बाबा बोलते थे बाबा, और उनकी आंख से आंसू आते थे। ऐसी कोई कन्या है जो सिर्फ बोले बाबा और आंखों से आंसू आ जाए? अंगना भाई के आते थे। ये पहला ऐसा बच्चा है बाबा का जिसने मम्मा के नाम पर, क्योंकि मम्मा बेंगलोर में रहे थे 3 महीना लास्ट में शरीर छोड़ने से पूर्व, तो उन दिनों अंगना भाई वहां पर थे, अंगना भाई के घर पर ही रहे। उस बिल्डिंग का नाम रखा जगदम्बा भवन, जहां अपना सेंटर आज भी चलता है। और दूसरा वो रखा जो स्क्वायर होता है ना आजकल, ब्रह्मा कुमारी स्क्वायर, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चौक, ऐसे लगते हैं ना। उन दिनों में 64 में क्वाड्रेंट स्क्वायर का नाम उन्होंने रखाया जगदम्बा सर्कल, और आज भी वो जगदम्बा सर्कल वैसा वहां पर है। तो बहुत बच्चा ऐसा था। बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं अगर मुझे अंगना जैसे 5 बच्चे मिल जाएं तो मैं आज स्वर्ग ले आऊंगा, इतना अच्छा था। तो बाबा ने कहा बड़े दीदी को, दीदी पार्टी जा रही है और आप टोली अंगना के लिए भेज देना। दीदी कंट्रोलर थी, दीदी ने कहा हाँ जरूर। तो दीदी ने, जैसे होता ना कोई बड़ा है तो बड़ा फिर आगे पास ऑन कर देता है, तुम ये काम कर देना। तो दीदी ने किसी और को बोल दिया। उसने कहा हाँ दीदी जरूर। दीदी रेस्ट में चले गए। शाम को बाबा ने दीदी को पूछा, दीदी टोली गई अंगना को? दीदी ने बड़े सहज लहजे से कहा, हाँ बाबा अवश्य चली गई होगी, मैंने उसको कहा था। बाबा ने कहा जाके पूछ के आओ। जब पूछने के लिए गए तो दीदी ने, वो बहन ने कहा मैं तो दीदी भूल गई। दीदी सिंपल वे में आके बाबा को कहा, बाबा दीदी तो ये वो टोली तो गई नहीं। बाबा गंभीर हो गए। बाबा ने कहा दीदी ये छोटी भूल नहीं है, ये बड़ी भूल है। क्यों? बच्चे को टोली जाती है, वो टोली खाता, बाबा को कितना याद करता, उसकी कितनी कमाई होती, अब वो जो सब कुछ कटा वो सब अब तेरे अकाउंट में गया। समझ आई बात? सारा लॉस तुम्हारे अकाउंट में गया। हम लोग कितना सहज रूप से कहते हैं हम भूल गए, भूल गए। नहीं, आप यंग कन्याएं हो, आपको कभी भी भूलना नहीं है, ये लक्ष्य रखो। और ये तब होगा जब अपनी बुद्धि को व्यर्थ से फारिग रखोगे। व्यर्थ होगा तो भूलना होगा, व्यर्थ से फारिग होगा तो नहीं। गुलजार दादी है ना, वो पांडव भवन में मुरली सुनाते थे क्लास में, जब तो हम लोग सामने बैठ के मुरली सुनते थे, तो मानो कोई स्टूडेंट आया और हमारी आंख वहां गई ना, तो दादी तुरंत कैच करती थी। दादी कहती थी वहां क्यों देखा, तुम्हारी ड्यूटी है सबको बिठाने की। दादी ऐसे बोलती थी, तुम्हारी ड्यूटी है सबको बिठाने की। नहीं दादी मेरी ड्यूटी तो नहीं है, फिर वहां आंख क्यों गई? इसका अर्थ सुन नहीं रहे हो, सामने देखना चाहिए। क्यों गई आंख? आपको कुछ काम है उसमें, दादी ऐसे बोलते थे, आपको कुछ काम है उस स्टूडेंट से। नहीं दादी कोई काम नहीं है, फिर वहां क्यों देखा? ये छोटी छोटी आदतें जो बाबा ने दादियों को बचपन से सिखाई है और आज भी दादियां उनको मेंटेन रखती हैं, ये हमें अपने अभ्यास में लाना है। बुरा नहीं मानना, अभी भी कुछ कुमारियां मोबाइल लेकर के देख रही होंगी, लेकिन मम्मा इसको कहती थी बाबा का डिसरिगार्ड है। क्यों? क्योंकि बाबा की बताई हुई दिनचर्या अनुसार क्लास चल रहा है और उस क्लास में मैं क्या कर रही हूं, तो धारणा तो नहीं होगी ना। ऐसे मम्मा सिखाती थी। मम्मा की कॉन्सेंट्रेशन पावर और मम्मा जो वैल्यू देती थी बाबा के शब्दों को, वो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूं। एक बार लोग क्वेश्चन करते थे, बाबा आपने मम्मा को इतना आगे क्यों रखा, ऐसा मम्मा ने क्या किया जो छोटी सी बच्ची और आज हम सबकी कंट्रोलर बन गई। मम्मा मम्मा कैसे बनी, कैसे इतना इनको महत्व मिला। तो बाबा ने कहा मैं एक दिन बताऊंगा। तो बाबा एक दिन समझा रहे थे कोई विद्यार्थी को, ये बात मैंने आपकी क्लास में सुनाई तो नहीं है, समझा रहे थे तो मम्मा भी बैठी थी और दीदी भी बैठी थी। थोड़ी देर में दीदी को ख्याल आया कि बाबा ने इसको टोली भी देनी है, सौगात भी देनी है, तो दीदी उठ करके बाहर गए और कार्य पूरा हो गया। जब वो भाई चला गया तो बाबा ने दीदी जी को पूछा, दीदी बाबा ने इस विषय में उसको क्या समझाया। दीदी ने थोड़ी बहुत कोई बात बताई, उसके बाद कहा बाबा मैं बाहर चली गई थी और टोली आपके लिए लाने के लिए गई थी। फिर बाबा ने मम्मा को पूछा, मम्मा बाबा ने क्या समझाया। मम्मा ने हूबहू रिपीट कर दिया। बाबा ने कहा दीदी देखा, इसलिए मम्मा मम्मा है, क्योंकि मम्मा भगवानु वाच को महत्व देती थी। उसने ये नहीं देखा टोली आदि, वो बाद में भी दी जा सकती थी, लेकिन बाबा समझा रहे हैं मम्मा उसमें से एक अक्षर भी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मम्मा मम्मा बन गए। ये धारणाएं हम सबके लाइफ में चाहिए। हमारी बड़ी दादी, आप सब जानते हैं दादी कैसे नाचती थी, मुरली सुनाती थी, नाचती थी, कभी भी अपने संस्कार इमर्ज होने नहीं देती थी, बाबा का स्वरूप नजर आता था। आप अपने जीवन में जब आप टीचर बनो तो मैं कहूंगी दादी जी को सुनना, दादी कैसे मुरली सुनाती है नशे में खुशी में, उस नशे और खुशी में मुरली सुनाना सीखना। भगवान वाच कितना प्यार से देना चाहिए। दादी जानकी 13 बार मुरली पढ़ती थी, 13 बार। इसलिए आज ज्ञान की देवी है। देखते हो ना कितना मंथन मनन चिंतन दादी करते हैं। कितना करते हैं। इन दादियों को देखते हुए और इतना प्यार आपस में, श्रीमत के सिवाय कोई भी दादी कोई कार्य नहीं करती थी। एक बार हम कर्नाटक टूर पर थे चंद्रमणि दादी जी के साथ, अम्बेसडर कार थी। आज से कोई 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, 30 से भी ज्यादा होंगे शायद। अम्बेसडर कार में 3 भाई आगे बैठे थे, पीछे दादी, मैं और विजय बहन थी। मेरे को ये नेचर का शौक अभी तो थोड़ा घट गया, लेकिन उसका होता था, कहीं ब्यूटीफुल जलप्रपात होता था वो तो मुझे अच्छा लगता। तो भाइयों ने कहा कि नाश्ता ऐसे रोड साइड पर करने के बजाय 1 किलोमीटर दूरी पर ही, 1 किलोमीटर दूरी पर ही जलप्रपात है, वॉटरफॉल है, वहां नाश्ता कर लेंगे। ठीक है, हमने दादी जी को कहा, चंद्रमणि दादी जी को। दादी कहते नहीं, 1 किलोमीटर कितना होता है? दादी ने कहा नहीं। तो दादी 1 ही किलोमीटर है। बोले नहीं, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, अंदर में गुस्सा भी आया कि 1 किलोमीटर दूर है रोड साइड पे करने की बजाय वहां नहीं चल सकते क्या? दादी ने बोला नहीं। अब दादी के आगे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, हम तो छोटे हैं। फिर दादी ने एक फॉर्मूला दिया। दादी ने कहा जहां सेवा नहीं है वहां ब्राह्मणों के कदम नहीं पड़ सकते। समझ आई बात? हम ऐसे ही घूमने चले जाते हैं यहां वहां सब जगह, लेकिन दादियों की धारणा ये थी, वहां सेवा तो नहीं थी ना 1 किलोमीटर पर, तो हम ब्राह्मण वहां नहीं जा सकते। ऐसे बाबा ने ज्ञान और योग इतना पक्का इन दादियों के अंदर कराया है, जो आज इन दादियों के कारण से, प्यारी बहनों, गुलजार दादी सुनाते हैं, बाबा पत्र लिखते थे, बच्ची आधी रोटी कम खाओ लेकिन पैम्फलेट छपा के बांटो। और दादियां ऐसा करती थी। आज हम सब उन दादियों की उस तपस्या की रिजल्ट है, जो तपस्या और त्याग दादियों ने किया। अगर वो उस समय ना किया होता तो आज हम सब होते या? इसके महत्व को रखते हुए, आप शिव शक्तियां हो, आप आगे क्या करोगे ये सोचना। दादियां कहती हैं हम लाए हैं तूफान से यज्ञ की इस किश्ती को निकाल के, इस यज्ञ को रखना प्यारी कन्याओं संभाल के। शिव शक्तियां, मैं कन्या नहीं हूं, कौन हूं? शिव शक्तियां। आप लोगों के दिलों में आता है ऐसा हम लोगों को करना चाहिए? क्योंकि भविष्य तो आप है ना, हम लोगों ने तो अपनी उम्र गुजारी, अभी भविष्य आप हैं। आप जितना मर्यादा, जितना अनुशासन, जितनी पढ़ाई, जितना त्याग, जितनी तपस्या, जितनी जिगर की सेवा आप करेंगे उतना ये यज्ञ फलता फूलता और बढ़ता रहेगा। तो आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। समझते हो इतनी जिम्मेवारी? समझते हो? अब इस क्लास के बाद आप सोचना कि मुझे कौन सी बातों की धारणा अपने अंदर पक्की करनी है। आप समझते हो कुछ पक्की करनी चाहिए धारणाएं? इस क्लास से प्रेरणा लेते हुए मैं अपने लिए ये बात पक्की करूंगी, ऐसा ख्याल किस किस को आया? जरा हाथ तो खड़े करो। अच्छा, मेजॉरिटी को आया, थैंक यू, अपने लिए ताली बजा लो। ठीक है, इसको करना, आज डायरी में नोट कर लेना, फिर इसको प्रैक्टिकल में करना। ओके, ओम शांति।